देखते हैं अब तफसीर।
वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, और मदद मांगो नमाज से और सबर से और नमाज से। यानी अगर आप पिछली आयत में देखें कि कहा जा रहा है कि तुम क्यों ऐसे करते हो, कि लोगों को तो हुक्म देते हो अपने आप को भूल जाते हो। इंसान कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे करूं, तो फिर मदद मांगो अल्लाह से सबर के साथ और सलात। यानी दे ये दो टूल्स अल्लाह तआला ने बता दिए, इनके जरिए मदद मांगो। किस चीज में मदद मांगो? इस काम में भी जो पहले बताया गया, यानी नेकी करना अगर मुश्किल लग रहा है, अपने लिए मुश्किल लग रहा है, दूसरों को कहना आसान है, अपने लिए मुश्किल लग रहा है, तो अल्लाह से मदद मांगो इनके जरिए। और वैसे भी ओपन एंडेड है कि अल्लाह से मदद मांगो साथ सबर के और नमाज के। सबर क्या चीज होती है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किस जगह पे? हम सिर्फ सोचते हैं कि जब कोई फौत हो जाता है तो फिर कहना होता है सबर करो, और वो सबर का मकाम है। नहीं, सबर हर मुसीबत के वक्त, हर परेशानी के वक्त, हर कोई फौत होना एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन और भी जितनी मुसीबतें हैं, जितने मसले आते हैं, जितनी परेशानियां आती हैं, उनमें सबर। सबर क्या है? उस वक्त इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सबर है। मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ? चीखना, चिल्लाना, वावेला करना। मिसाल के तौर पर किसी को कोई, अल्लाह माफ करे, ऐसी न्यूज मिल जाती है किसी के एक्सीडेंट की मिल जाती है, या अपने किसी प्यारे की कोई ऐसी बात पता चल जाती है, हस्बैंड की पता चल गई, बच्चे की किसी की पता चल गई कि कोई ऐसे गलत काम के अंदर वो है इन्वॉल्व, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? ये भी एक मुसीबत ही है ना। तो सिर्फ मरने के ऊपर सबर नहीं होता, इन सारी इस किस्म की मुसीबतों के ऊपर सबर होता है। जब आपने कोई चीज देखा कि कोई चीज आपकी टूट गई है, जो बड़ी कीमती चीज थी, या आपने तो आपको पता चला कोई चीज आपकी बहुत कीमती, कोई सेट था वो गुम हो गया, आपने कोई बाली पहनी हुई थी वो कोई गिर गई। अब ये सारी एक मुसीबतों की फॉर्म्स हैं, इनमें भी सबर, इनमें भी सेल्फ कंट्रोल। इंसान ऐसा आपे से बाहर ना होना शुरू हो जाए, चीखना, चिल्लाना, गालियां देना, झगड़ा करना, किसी को बुरा भला कहना, ये इस पे ना हो जाए, ठीक है? इसी तरह सबर, दूसरा एक और भी सबर होता है, सिर्फ मुसीबत में सबर नहीं होता, गुनाहों के आगे भी सबर के साथ डट के रहना कि इंसान वो गुनाह ना करे, उस गुनाह में जाके ना जा पड़े, ये भी सबर है। यानी अपने आप को रोक लेना, सेल्फ कंट्रोल। आपका दिल चाह रहा है वो करने का, आपका दिल चाहता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी टेम्पटेशन रखती हैं, वो कुछ देखना भी हो सकता है, वो कुछ पहनना भी हो सकता है, वो कुछ सुनना भी हो सकता है, वो कुछ कुछ भी कुछ चीज हो सकती है, वो टेम्पटेशन है, वो कुछ बोलना भी हो सकता है, वो कहीं जाना भी हो सकता है। अब लेकिन वो गलत है, आपको पता है वो गलत है, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लेना, नहीं मैंने ये नहीं करना। अब ये जो आपने अपने आप को कंट्रोल किया ना, अपने आप को खुद बांध लिया, अपनी बागें खुद खींच ली है ना, ये भी सबर है। तो सबर वो पहली किस्म का सिर्फ सबर नहीं होता, उसको भी हम इन टोटैलिटी तो जानते ही नहीं। हम सबर सोचते हैं बस सबर है, कोई मर गया तो फिर सबर है, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, तीसरा भी एक सबर होता है, और वो है नेकी के काम पे सबर। नेकी के काम में भी क्या, खुद को जमा के रखना, ये भी है ना, कंट्रोल करना अपने आप को। बेसिकली तो सबर है ही सेल्फ कंट्रोल। अब आपका दिल चाहता है कि हाँ आप क्लास को कंटिन्यू करें, आपका दिल चाहता है कि आप कुरान को पढ़ें, लेकिन अब ये काम आ गया, वो काम आ गया, आए अब क्या करूं, अब तो मेरे से होता ही नहीं, अब मेरे शौक बहुत है, लेकिन मुझे यहां पे क्या चीज की जरूरत है? सबर की। नमाज के लिए भी क्या चाहिए? सबर चाहिए कि आपने करते ही चले जाना है, आपने ये नहीं करना कि अच्छा आज किया तो कल छोड़ दिया, सबर चाहिए ना। कंट्रोल करें खुद को कि आपकी नींद बड़ी मीठी आ रही है, या थकन बहुत हुई भी है, उठा नहीं जा रहा, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना और कहना नहीं मैंने उठ के नमाज पढ़नी है, ये सबर है। इस तरह बहुत सारे लोग आपको ताने दे रहे हैं किसी नेकी को करने पे, कोई मुलानी कह रहा है, कोई एक्सट्रीमिस्ट कह रहा है, कोई कह रहा है तुम क्या बन गई हो, तुम क्या ये हो, उस वक्त क्या चाहिए उस नेकी पे जमने के लिए? सबर। ये नहीं कि उसी दिन छोड़ के बैठ जाए, उसने मुझे ये कह दिया, आए आप तो मैं थक बहुत गई हूं, आए आप तो मेरे से नहीं ये होता, आज सुस्ती आ गई, किसी दिन कुछ कुछ और तीसरी चीज हो गई, तो ये सबर, इसमें भी सबर चाहिए। तो सबर, जब आप सबर करेंगे ना, मैंने आपको इस्तेआनत क्या बताया, देखिए इस्तेहानत ये नहीं होती कि बस खुद, मसलन आप लेटे में और कह रहे हैं पानी आ जाए मेरे मुंह में पड़ जाए, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मुझे बड़ी प्यास लगी मुझे पानी पिला, ये नहीं है इस्तेहानत। सियानत ये है कि आप एफर्ट करें फिर अल्लाह से मदद मांगे, ठीक है। तो आपने एफर्ट क्या की, आप खुद सबर करेंगे और आप खुद नमाज पढ़ेंगे तब अल्लाह की मदद आएगी, ठीक है, तब अल्लाह भी आपको थाम लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसको सबर दे देता है। तो अगर आप सबर अल्लाह से मांगेंगे और सबर आप करना चाहेंगे कि मैंने सबर करना है तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, अल्लाह भी आपको थाम लेगा। लेकिन आप खुद ही नहीं करना चाहते और आप कहें बस पहले सारे वाबिले कर लिए, सब कुछ कर करके फिर उसके बाद का अब तो हम सबर ही कर लेते हैं, नहीं ये नहीं होता सबर। सबर सदमे के शुरू में ही होता है, बाद में तो करार आ ही जाना होता है। जब वक्त गुजरता जाएगा तो जाहिर है वक्त बहुत बड़ा मरहम है, फिर इंसान को सबर तो आ ही जाना होता है एक दिन। मतलब शुरू में आपने क्या किया ये चीज होती है। आपने कोई भी ऐसी बात जो आपकी तबीयत को पे ग्रां गुजरने वाली है जूं ही सुनी तो आपने क्या किया। तो सबर और सलात से जो मदद मांगो इन दो चीजों के साथ, वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, बेशक ये कहा जाता है नमाज की तरफ इशारा है या दोनों की तरफ, या ये सब चीजें हा की जमीर सब चीज यानी लोगों को कहना और खुद ना कर रहे हैं, या फिर नमाज और जकात और ये सब चीजें, या ईमान लेकर आना है, ये सब चीज ये बहुत बड़ी चीजें और बड़ी भारी चीजें हैं। या फिर सिर्फ आप सलात भी समझ सकते हैं, मुख्तलिफ मुफसरीन ने डिफरेंट चीजें लिखी हैं कि नमाज की तरफ इशारा है या सब्र और सलात की तरफ इशारा है, ये बहुत बड़ी है मगर सिवाय उसके जो खुशू करने वाला उसके लिए भारी नहीं है। अब पता है नमाज, बाज लोगों के तो नमाज पढ़नी ही बहुत भारी है कि पांचों नमाजें कैसे पढ़े, वो उनकी वो ही नहीं पक्की हो पाती। बाज के तो नमाज तो पढ़ ली है लेकिन भारी क्या है, खुशू उसके अंदर। नमाज पढ़ ली है लेकिन नमाज कौन सी नमाज है, सलातुल अबदान है, बदन की नमाज है, सलातुल कुलूब नहीं है, दिल की नमाज नहीं है, दिल हाजिर ही नहीं, दिल को पता ही नहीं कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो इन्ना हला कबीरा तुम इला अल खाशीन, कईयों के लिए बहुत भारी है मगर खुशू करने वालों के लिए भारी। वो कौन होते हैं खुशू करने वाले, खुशू भी खुशू एक ऐसा जज्बा है जिसमें कि इंसान किसी की अजमत की वजह से उससे डरे, अजमत की वजह से कि वो इतनी बड़ी हस्ती है उसके आगे मैं कुछ गलत काम करूं, ये होता है खुशू, ठीक है। किसी की जैसे कि एक हैबत होना, किसी के आगे झुक जाना उसकी हैबत की वजह से, उसकी अजमत की वजह से। वो कौन होते हैं खाशीन, अल्लदीना यदुन्नूना अन्नहुम मुलाकु रब्बीहिम, जिनको ये पता होता है ना कि हमें अल्लाह से मुलाकात होनी है, वो अन्ना मिले राजन, और हमें लौट के उसकी तरफ पलटना है, जाना है उसकी तरफ, वो खाशीन होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए नहीं नमाज भारी, उनके लिए नहीं सबर भारी, उनके लिए नेकियां करना नहीं भारी, बाकियों के लिए हाँ वाकई भारी है। और वाकई आप देख लें कि जब ये ईमान वीक होता है कि मुझे पलटना है अल्लाह की तरफ, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, ये वीक होता है ना, तो फिर इंसान के लिए नमाज भी भारी, हाय फिर कैसे उठें, हाय फिर कैसे करें, ओ ये तो बड़ी मुश्किल, ओ आजकल तो नमाजें बस घंटे घंटे बाद तो नमाजें हो रही हैं, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं पढ़ जाते, ओ सबर तो इतना ही मुश्किल है कि बस, ये नेकियां करना तो बहुत मुश्किल है, अमल बड़ा मुश्किल है, फिर सारी चीजें ही मुश्किल है। लेकिन जितना ज्यादा ये अकीदा स्ट्रोंग होगा कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है और मुलाकात में मैंने उसके आगे खड़े होना है, मैंने उसको जवाब देना है, फिर सारी चीजें ही आसान है। आप देख लें रिश्तेदारों से निभाना कोई आसान तो नहीं है ना? लेकिन जब ये चीज का यकीन हो, यकीन कहा गया यहाँ पे, यकीन ही तो मुतजलजल होता है, यकीन हो कि मुलाकात करनी है अल्लाह से और उसने पूछना है, तो फिर कैसे नहीं हम करेंगे। जब ये यकीन हो कि लौटना है, मुझे मौत आनी है, मैंने जाना है वो एक और जहान में, तो फिर कैसे नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहां पे होती है, मुलाकात का यकीन नहीं होता। मुलाकात का जिसको यकीन होता है ना, वो फिर इसकी रिहर्सल करता है, 5 दफा दिन में अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़ा होता है, ये उसकी रिहर्सल हो रही है कि मैंने ऐसे ही मैदाने हशर में भी खड़े होना है अल्लाह के आगे, जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। फिर उसको लगता है अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं उसके आगे खड़ा हुआ हूं, फिर खुशबू भी आता है, फिर दिल भी लगता है नमाज में, फिर वो झुकाव वाकई झुकाव होता है, फिर एक्सरसाइज नहीं होती, तो ये इनके लिए भारी नहीं है, बाकी सबके लिए भारी है। या बनी इसराइल अस्कुरू नियमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नियमते जो मैंने इनाम किया तुम्हारे ऊपर। फिर दोबारा उनको कहा गया, देखिए जैसे एक माँ नहीं कहती बच्चे को प्यार से, कहती बेटा मेरी बात सुन लो, बेटा समझ जाओ मेरी बात को, देखो मैं तुम्हारी कितनी तकलीफें उठा के तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हारी परवरिश में कितनी मुशक्कत उठाई, तुम अब समझ जाओ मेरी बात। अब बार बार कहती है ना, अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोबारा उसकी शफकत है और उसकी मेहरबानी है, बनी इसराइल याद करो मेरी नेमते, यानी नेमते याद करके मुझे याद करो, मेरा एहसान मानो ताकि तुम फिर ईमान ले आओ, जो मेरी बातें कह रहा हूं उनको पर अमल करो। अरे जब इंसान, मैंने आपको जैसे बताया, जिसने आपके ऊपर बहुत एहसान किया होता है फिर आप उसकी बात टाल नहीं सकते। जब अल्लाह ताला अपनी नेमते याद करा रहा है तो मकसद यही है कि तुम अल्लाह की बात को मानो। आमीनू वहां पे कहा गया और यहाँ पे कहा गया अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये तुम मेरी नेमत देखो कि मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत दी है पूरे, यानी उस वक्त के दौर में जितनी कौमें थी उन सब के ऊपर इनको फजीलत मिली। देखे और बुत परस्त थे, कोई कोई थे, किसको पूजा करते थे कोई किसी की, लेकिन ये तौहीद पर थे। अल्लाह ने इनके पास पैगाम हिदायत भेजा, इनको चुना, तुम्हें मैं अपने दीन के पैगाम के लिए चुनता हूं। जैसे एक, जैसे तो नहीं कह सकते मिसाल, लेकिन एक जस्ट आपको समझाने के लिए, एक प्रेसिडेंट कहे कि मैं अपना एम्बेसडर फलां को बनाता हूं। वैसे भी एम्बेसडर बड़ी चीज होता है, लेकिन एक मुल्क का एम्बेसडर होना कितनी बड़ी बात होती है। तो वो कह दे कि मैंने अपना एम्बेसडर किसी को बनाया, ये तो बड़े ऑनर की बात होती है उसे। एक ये दुनिया के मुल्कों के एम्बेसडर हैं, किसी सदर वजीर का कोई सफीर है, एक है अल्लाह का एम्बेसडर होना, कितने बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह की बात को तुम आगे पहुंचाओ, पहुंचाने वाले बनो, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने अपना पैगाम दिया है, तुम आगे इसको लेकर निकलो, ये बहुत बड़ा ऑनर था। और फरमा दिया ये एक यूनिवर्सल रूल है जो यहां पे बता दिया गया, सब के लिए बता दिया गया, उनके लिए भी, क्योंकि उनको डर था हर वक्त कि वो उनका क्या होगा, वो हमारे फैन नहीं रहेंगे, हमारी फॉलोइंग खत्म हो जाएगी, हमारी कुर्सी का क्या बनेगा, हमें कौन पूछेगा, फिर हमारे पास तो कोई आया ही नहीं करेगा कोई सवाल पूछने के लिए। वो ये भी ना, वो लोगों को एजुकेट नहीं करते थे, क्योंकि किस लिए नहीं एजुकेट करते थे, अगर इन सारों को इल्म आ गया तो हमारी क्या चौधराहट रहेगी, हमसे को पूछने आएगा। देखिए ना, अब आप सारों को अगर इल्म हो जाए तो आपको किसी के पास क्वेश्चन नहीं करने जाने की जरूरत होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे हमारे पर बस लोग डिपेंडेंट रहे, नहीं चाहते थे कि लोग बस हमारे हाथ से निकल के अपने अपने सबको सब पता चल जाए और हमारा फिर हमें कौन आके पूछेगा। मसलन सारे ही निकाह पढ़ाना सीख लें, सारे ही जनाजा पढ़ाना सीख लें, तो किसी को कोई क्यों बुलाएगा। वो कहते हैं कि भाई कोई भी ना सीखे, हम ही आके करें, हमारा ही बस वो होल्ड हमारे, ये नहीं कि उनका कसूर है, हमारे लोग खुद नहीं सीखते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यानी कुछ चीजें हैं जो उलमा ने अपने हाथों के अंदर रखी होती ना, या इमाम है या कोई है, अब वो अगर अवामुन नास भी सीख लेंगी तो उनकी क्या अहमियत रहेगी। ठीक है, बहुत डेप्थ का नॉलेज तो उन्हीं के पास होता है क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं और हर कोई नहीं वो हासिल कर सकता, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए ना, तो वो बेसिक नॉलेज भी नहीं देते थे ताकि ये हमारे पास बस आते रहे। कहा गया वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। अब जब एक बात से तो समझाने के तरीके होते हैं ना, आप भी अपने बच्चों को जब समझाते हैं तो आप क्या प्यार मोहब्बत से भी समझाते हैं, फिर ये भी कहते हैं बट डरो उस वक्त से, अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर तुमने मसलन पढ़ाई ना की तो डरो उस वक्त से कि ये ना हो कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, ऐसे कहते हैं ना। तो यहां पे भी उनको डराया भी किया कि देखो बच्चों डरो उस दिन से जब नई काम आएगा, नई बदला बनेगा कोई नफ्स किसी नफ्स के भी। वला युक्बलु मिनहा शफातुन, और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही किसी से कोई बदला लिया जाएगा, ना कोई मदद दिए जाएंगे। जब इंसान किसी मुसीबत में, बड़ी मुसीबत में फंस जाए ना, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो इंसान अपने आप को खुद निकालने की कोशिश करता है, अगर नहीं निकाल सके तो क्या करता है, फिर इधर उधर देखता है कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है, चाहे मुझे उसके पास जाके पैसे दे के मदद लेनी पड़े, चाहे मुझे उसकी मिन्नतें करनी पड़े, चाहे मुझे उसके पैर पकड़ने पड़े, चाहे मुझे उसकी खुशामदें करनी पड़े, कहीं से मैं हेल्प लूं, चाहे मुझे अपने आप कॉन्टेक्ट्स को यूज करने पड़े, यही चीजें होती हैं जब इंसान मुसीबत में पड़ता है। क्यामत का दिन बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ने इसे डराया है कुरान में। अल्लाह ने फकरो फाके से नहीं डराया कि डरो फकरो फाके से, ये ना हो एक दिन तुम्हें रोटी ना मिले खाने को, डरो उस दिन से, ऐसे नहीं कहा। डरो बीमारियों से, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए, ये नहीं कहा। जिन चीजों से हम डरते हैं ना, उनसे नहीं डराया अल्लाह ताला ने कयामत के दिन से, मगर बहुत दफा डराया कि डरो डरो, वो दिन बड़ा मुश्किल दिन है। कोई नफ्स किसी का बदला नहीं है, कि कोई ये नहीं कहेगा, कोई मां नहीं कहेगी मुझे ले ले अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, वो तो कहेंगे बच्चे को डाल दे अल्लाह मुझे ना पकड़। ये खुद ही ऐसे थे, अल्लाह मैंने तो इनको बड़ा समझाया था, वो माँ बाप भी अपने आप को बरी जिम्मा कर लेंगे, तो कोई जान किसी जान का बदला नहीं बनेगी। या कोई कहे कि मेरे तो इतने नौकर चाकर गुलाम है, इनको अल्लाह पकड़ ले क्योंकि मैंने इनको अपनी जगह दे दिया। जैसे दुनिया में पकड़वा देते हैं ना, काम कुछ गलत मालिक ने किया होता है, और वो नौकरों को, कोई अपने ड्राइवर को, कोई किसी को पैसे दे के और कहते हैं तुम मेरी जगह पे जाके तुम मुकदमे भुगतो और तुम ही जेल चले जाओ, इसी ने किया था, उनके ऊपर डाल देते। तो कयामत में ये नहीं हो सकता है, ना किसी की सिफारिश कबूल होगी। तो फिर शिफात का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि शिफात है? देखिए शिफात हम जो समझते हैं ना कि कोई जिसका दिल करेगा वो किसी की सिफारिशें करा के, जैसे दुनिया में उल्टे सीधे लोगों की सिफारिशें करा के और उनको निकलवा लिया जाता है जेलों से, वही ऊपर से किसी की अप्रोच आई और बस सब चीज सब केस निकल गए, खत्म हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऐसे होता है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट कयामत का नहीं है। हम सिफारिशें दुनिया वाली ना ना समझें। वो सिफारिश कैसी है कि अल्लाह ताला उस दिन जिसको चाहेगा उसके लिए सिफारिश होगी, और जिससे चाहेगा उससे कहेगा कि तुम सिफारिश करो, यानी करने वाला और जिसके लिए की जाए दोनों अल्लाह के इज़न से होंगे। समझ आई? दोनों अल्लाह के इज़न से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी एक को कोई पसंद है तो वो खड़ा होकर उसकी सिफारिश शुरू कर दे, नहीं। तो बेसिकली हुआ तो यही कि जिसको अल्लाह बख्शना चाहेगा उसके लिए किसी को खड़ा करेगा कि तुम सिफारिश कर दो, क्योंकि अल्लाह उसको ऑनर देना चाहता है। सिफारिश करने वाले को अल्लाह ऑनर देना चाहता है कि उसकी अहमियत, तो लोग उसकी तरफ देखें, उसको उसको एक मकाम देना चाहता है, उसको इज्जत देना चाहता है लोगों, इसलिए उसको खड़ा करेगा। वरना अल्लाह खुद भी बख्श सकता है, अल्लाह को क्या जरूरत है कोई कहेगा तो फिर उसने बख्शना है, उसकी मर्जी है, जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे अजाब दे। तो उस दिन सिफारिश कोई कबूल नहीं की जाएगी, इसका मतलब यही है। वो तो वो शिफात तो एक सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई किसी को निकलवा ले, और ना ही किसी से कोई बदला लिया जाएगा कि ये बदला मैंने दे दिया इस चीज का, इस गुनाह का ये बदला हो गया, और ना ही कोई मदद दिए जाएंगे कि वो उनके कोई सिपाही आ जाए, कोई किसी के फौज लश्कर आ जाए उनको बचाने के लिए, कोई किसी के फैंस आ जाए, ये कोई मेरी फॉलोइंग इतनी है फेसबुक पे, मेरे तो फैंस इतने हैं, मैं तो पॉपुलर ही इतनी हूँ, वो उनके लिए आ जाए, खड़े हो जाए उनकी मदद करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस दिन से डरो, यानी आप सोचें कि जब ये सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, ना कोई अप्रोच है, ना कोई कॉन्टेक्ट है, ना कोई पैसा चल रहा है वहां पे, कि कोई पैसा दे दिया तो भाई छूट गए कि कोई मैं इतने पैसे देती हूँ मेरे से ले लो और इसका इलाज कर दो। दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं ना, जब किसी मदद चाहिए होती है, अच्छा हम कितना चाहिए आपको, हम उतना आपके मुंह मांगी हम कीमत देंगे, लेकिन हमें इस चीज से निजात हो, वो बदला भी कुछ नहीं लिया जाएगा। जब ये सहारे है ना, ये होते हैं ना जिनकी तरफ हम देखते हैं दुनिया में जब मुसीबत में पड़ जाते हैं। सोचें जरा, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि सब सहारे खत्म हो गए, ना पैसा चल रहा, ना कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, ना कोई सिफारिशी अप्रोच चल रही है, ना कोई मददगार आ रहे हैं, ना कोई बहन भाई माँ बाप खड़े हो रहे हैं मेरे लिए, तो फिर इंसान को क्या लगता है? अकेला अपना आप, एक अल्लाह है और एक मैं, बस हर चीज इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक मुकालमा जो है इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में लिखा है, उन्होंने انہوں نے لکھا تو حق کو چھپانے کے اوپر ہے، مگر ان ساری باتوں کو ہی وہ احاطہ کرتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس وقت رکھتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو حق کو نہیں چھپانا چاہیے، کہ ابن حازم جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ تابعی تھے. تابعی کا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں صحابہ کو دیکھا ہو، کسی صحابی کی صحبت ان کو ملی ہو، ان کو کہتے ہیں تابعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ دنیا میں گھومے پھرے، جنہوں نے ان سے کبھی فیض حاصل کیا، جنہوں نے کبھی ان کی صحبت لی، ان کو تابعین کہتے ہیں. تو ابو حازم تابعی تھے اور خلیفہ اس وقت سلیمان بن عبد الملک تھا. تو ایک دفعہ خلیفہ جو تھا وہ مدینہ پہنچا اور چند روز اس نے قیام کیا. تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ مدینہ میں ابھی بھی کیا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کسی صحابی کی صحبت ملی ہو؟ لوگوں نے بتایا ہاں ابو حازم ہے. اس نے کہا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ. جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی ہے، کیا بے وفائی ہے؟ نے کہا کہ میں نے کیا بے مروتی بے وفائی کی ہے؟ سلیمان نے کہا، مدینہ کے سب سے مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے اور آپ نہیں آئے مجھ سے ملنے. انہوں نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے، یعنی ایسی بات تو ہے ہی نہیں. آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے، نہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا تھا. ایسے حالات میں میں خود آپ سے ملنے کے لیے کیا آتا؟ کوئی اس کا سوال ہی نہیں تھا. یعنی انسان اس سے ملنے جاتا ہے نا جسے کوئی شناسائی ہو، نہ میں آپ کو جانتا نہ آپ مجھے جانتے، تو میں نے آپ سے کیوں ملنے آنا تھا؟ سلیمان نے جواب سن کے، ابن شہاب زہری بہت بڑے عالم ہیں یہ بھی، اور ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. اس کے بعد سلیمان نے بات بدلی اور اس نے کچھ سوالات شروع کر دی. اس نے کہا، ابو حازم، یہ کیا بات ہے، ہم موت سے گھبراتے ہیں. اچھا، یہ بات اتنی زبردست ہے نا، یہ مکالمہ ہی بڑا پیارا ہے، کیونکہ ابو دیکھیں تابعین کا دور بھی گولڈن پیریڈ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے، میرے بعد جو میرے بعد آنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا. تو تابعین کے اندر بھی بہت ابھی خدا خوفی اور بہت یعنی تقویٰ کے اعلیٰ پائے پہ تھے وہ. تو یہ سوال ہم بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت کا ذکر سنتے ہی آئے آئے آئے، موت کا تو ذکر بھی نہ کرو، منحوس بات کا ذکر نہ کرو. کچھ لوگ تو اتنا اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ وہ تو سننا ہی نہیں چاہتے کبھی، اس کا ذکر ہی نہیں سننا چاہتے. تو اس نے پوچھا، یہی جو ہم سب شاید سوال کریں کہ موت سے ہم کیوں گھبراتے ہیں، تو ابو حازم کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کیا اور دنیا کو آباد کیا، تو آبادی سے ویرانے میں جانا اب آپ کو پسند نہیں آ رہا. سبحان اللہ، کتنا زبردست جواب ہے. سلیمان نے مانا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. پوچھا، کل اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا، نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. اور برا عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے بھاگا ہوا غلام پکڑ کے آقا کے پاس حاضر کیا جائے. اب سوچنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کون سے ہیں، بھاگے ہوئے اپنے آقا سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہمیں آنا نہیں ہے اس کی طرف، اور یہاں پھر وہ ہیں جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا جا کے. سلیمان یہ سن کے رو پڑا، کہنے لگا، کاش ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا آگے رکھا ہوا. تو ابو حازم نے کہا، اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پہ پیش کر کے دیکھ لو، پتا چل جائے گا. سو ٹرو، رائٹ؟ اپنے اعمال کو، یعنی ہم سب سوچتے ہیں نا، کاش ہمیں پتا چل جائے ہمارا انجام کیا ہے وہاں پہ تاکہ ہم پھر بے فکر ہو جائیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے آگے پیش کر کے دیکھ لو، خود رکھ لو اپنے، یہ آئینہ ہے نا اللہ کی کتاب، اس میں اپنا عکس دیکھو، کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیا نظر آتا ہے؟ یہ ہے نا، اس کی بیس پر اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، تو اس سے ہمیں پتا چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. سلیمان نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت سے پتا چلے گا؟ فرمایا، اس آیت سے کہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں اور نافرمان گناہگار دوزخ میں. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ ان میں سے کون سے میں ہو. تو سلیمان نے کہا، اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، بہت بڑی ہے. بس اکثر اسی طرح اپنے آپ کو انسان بہلاوا دیتا ہے نا، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بس وہ تو بدکاروں پہ بھی حاوی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بدکار دوزخ میں جائیں گے، اللہ کی رحمت تو بدکاروں پہ بھی حاوی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب کن سے ہے؟ احسان کرنے والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے. بدکاروں پہ حاوی کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے. پھر کافی لمبا مکالمہ ہے، پھر ایک بات اور جو اس کے اندر آتی جو آپ کو بتانے کی ہے، اس نے پوچھا کہ مسلمانوں میں سے کون شخص احمق ہے، بے وقوف ہے؟ ابو حازم فرماتے ہیں وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین بیچ دیا، اپنی آخرت خراب کر لی. یعنی کتنا بے وقوف ہے، سب سے بے وقوف وہ ہے جو کسی کے لیے، یعنی کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے گناہ میں مدد کی، اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی، اپنا دین بیچ دیا. سمجھ آئی بات؟ مثلا آپ کو کوئی گناہ کا کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں پھر وہ ناراض ہو جائے گی نا، اگر میں نہیں کروں گی تو ناراض ہو جائے گی، اگر میں نہیں جاؤں گی تو ناراض ہوگی. اب وہ کام گناہ کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام ہے، صرف اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، تو پھر اپنے اس کی تو دنیا درست کر دی اور اپنا ہی آخرت خراب کر دی. اس کے بعد سلیمان نے پوچھا ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا مجھے اس سوال سے آپ معافی رکھیں تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا نہیں نہیں آپ ضرور بتائیں، اب ضرور آپ یہ کہیں. ابو حازم نے کہا امیر المومنین آپ کے آباؤ اجداد نے تو تلوار کے زور پہ لوگوں پہ مسلط ہو گئے اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پہ حکومت کی اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، کاش یہ اب آپ کو پتا ہوتا. آپ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتا نا بادشاہ کے خوش آمدی بھی ہوتے ہیں، اس کے ٹولا بھی ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کو بڑا راضی کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ کتنی بری بات آپ نے کی ہے. تو ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہمیں حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں، چھپائیں نہیں. لیکن لوگ کیا ہوتا ہے، جب ان کو حق بات بتائی جاتی ہے، گڑبڑ نہ کیا جائے، مثلا حق بات بتا دی جائے، تو لوگ کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. لوگ تو اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، اس عالم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ. سلیمان نے پھر سوال کیا اچھا اب ہمارے صحیح ہونے کا کیا طریقہ ہے پھر؟ اچھا پھر اب یہ تو ہمارے آبا اجداد نے کر ہی دیا، لیکن اب ہم کیسے صحیح کریں؟ فرمایا تکبر چھوڑ دو، عاجزی اختیار کرو، حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ دو. سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ آپ یعنی اب ایسے کسی نیک بندے کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہی رہے. فرمایا خدا کی پناہ، یعنی کہ میں نہیں یہ کر سکتا. سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال دولت عزت جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے. سبحان اللہ، یہ نہ ہو کہ مجھے عذاب بھگتنا پڑے. پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیں تاکہ ہم اس کو پورا کریں. خلیفہ جو تھا تو اس نے کہا کوئی ضرورت ہو ہمیں بتائیں، میں کوئی کام ہو مجھے بتائیں. جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جب بڑی اپنی کرم نوازیاں کرنے چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کام ہو تو بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں. فرمایا ہاں ایک ضرورت ہے میری. بولا کیا؟ کہنے لگے جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو. سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں. فرمایا پھر مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں. آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کر دیں. تو انہوں نے دعا کی یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان کر دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور اپنے محبوب کاموں کی طرف اس کو لیا. کتنی خیر کی دعا ہے نا. سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت کریں. ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت کا خیال رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا. सुलेमान ने इस मजलिस से फारिग होने के बाद 100 दिनार हदीये के तौर पे अबू हाजिम के पास भेजे। अबू हाजिम ने एक खत के साथ इनको वापस कर दिया। खत में लिखा था, अगर ये 100 दिनार मेरी इन बातों का बदला है जो मैंने आपसे की है, यानी इसका मुआवजा है, तो मेरे नजदीक खून और खिंजीर का गोश्त इससे बेहतर। और अगर ये इसलिए भेजा कि बैतुल माल में मेरा हक भी है, तो मुझ जैसे तो और हजारों उलमा और दीन की खिदमत करने वाले पड़े हुए, अगर सबको आपने उतना ही दिया जितना मुझे भेजा है, तो फिर ठीक है, फिर मैं ले सकता हूं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। ये वला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला, कि अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पे ना बेचो। अब देखें, जब आप किसी की पसंद की बात करते हैं तो वो नजराने भी देते हैं, कभी तो तोहफे तहायब की सूरत में भी देते हैं, कभी कोई चीजें नहीं, तो फिर उन्होंने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं, हदीये के तौर पे भी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने इन बातों का मुआवजा दिया मुझे कि मैंने अच्छी बातें आपसे की हैं, तो मैं इसका मुआवजा नहीं ले सकता, इसका बदला नहीं ले सकता। इसी बात के ऊपर बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो दर्स व तदरीस है, तालीम देना है, आगे सिखाना है, दीन का इल्म, अल्लाह की आयात को सिखाना है, इसका आप फीस इसकी नहीं ले सकते, इसकी फीस लेना जायज नहीं है, क्योंकि ये भी आयात को बेचना है। हाँ, मगर इसके बाद, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था ना कि ऐसे तमाम उलमा के लिए बैतुल माल से ही उनकी वजीफा कायम होता था और उनको घर चलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया में चेंजेस आती गई, अब उन उलमा के लिए अपना घर चलाने का तो कोई और सोर्स नहीं, वो तो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बस। अब अगर वो सिर्फ पढ़ाएं और पढ़ें और उनके घर चलाने का कोई जरिया ही आमदन नहीं है, तो फिर वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से उनकी फैमिली खाएगी, क्या होगा उनका? तो अब इसलिए उलमा ने कहा, हाँ ठीक है, फिर आप जायज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको फिक्स ना करेंगे, इतनी फीस मुझे दोगे तो फिर पढ़ोगे, और अगर इतनी नहीं देते तो फिर कोई नहीं पढ़ोगे, ये नहीं आप कर सकते। फिर भी इसको ओपन रखें और इसको भी दुनिया बनाने का जरिया ना बना लें कि इतनी भारी फीसें लें कि उससे अपनी जायदादें बना लें, फिर भी ये ना करें। यानी इतना इसको कंडेम किया गया कि ये जायज नहीं है किसी तरह से। तो अब इसलिए इस चीज की रुख्सत जो मिलती है, एक्सेप्शन मिलती है, वो फिर इसी वजह से कि फिर तो कोई भी दीन ना पढ़ेगा ना पढ़ाएगा, क्योंकि वो फिर कहेंगे फिर हम तो नौकरियां करें, हम घर का अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये जायज करार दिया इसको, अदरवाइज फिर कहा कि वैसे आपको जरूरत ना हो तो मत लो, अल्लाह की आयात को मत बेचो। कि जब भी ये कारोबार बनेगा ना, जब भी फीसें होंगी, कारोबार बनेगा, तो फिर क्या होगा, ओहो अब अगर मैंने एक की भी खिलाफ बात की तो ये चली जाएगी मेरे से, तो मेरी फीस का क्या होगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी फीस ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा फीस मिलेगी उतना ही मेरा तो फायदा होगा, तो फिर ये कारोबार बनने लगता। इसलिए इससे मना किया गया, इसमें कोई खैर नहीं होती फिर।